हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी 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 यशोदनन्दन व्रज जन रंजन
यशोदनन्दन व्रज जन रंजन
यशोदनन्दन व्रज जन रंजन
यशोदनन्दन व्रज जन रंजन
यमुना तीरावन चारी
यमुना तीरावन चारी
यमुना तीरावन चारी
यमुना तीरावन चारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
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 यशोदनन्दन व्रज जन रंजन
यशोदनन्दन व्रज जन रंजन
यशोदनन्दन व्रज जन रंजन
यशोदनन्दन व्रज जन
यमुना तीरावन चारी
यमुना तीरावन चारी
यमुना तीरावन चारी
यमुना तीरावन चारी
जय राधा माधव कुंज बिहारी
जय राधा
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna,
Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
श्रीमद भागवताम की श्री श्री राधा गोविंद देव की वृंदावन धाम की जताई गौर प्रेमानंद। सब लोग मेरे पीछे दोहराइए, अपने हाथ जोड़िए, बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं
चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतां सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, दे रही है कि नहीं? हरे कृष्णा। तो आज से हम एक विशेष कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हैं और ये विशेष कार्यक्रम क्या है? श्रीमद् भागवतम का सप्त दिवसीय सत्र है। तो श्रीमद् भागवतम ये बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण ग्रंथ है और भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्र कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतेर यदा क्रियते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्य तत्र निश्चितम्, कि जिस जिस स्थान में श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है और जिस स्थान में व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को एकाग्रता से श्रवण करता है, क्रियते श्रूयते चापि, या तो भागवतम का आयोजन करता है, सारे जगत को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने की जो अपॉर्चुनिटी है, संधि प्रदान करता है, तो ऐसे स्थान में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आदि पुराण में कहते हैं कि मैं स्वयं उस स्थान में निश्चित रूप से उपस्थित होता हूं। एक बार जब नारद मुनि सब जगह भ्रमण करते हैं, तो भ्रमण करते करते जब वैकुंठ चले गए तो नारद मुनि भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि मैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता हूं, तो अलग अलग लोग मुझे बारंबार कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, और एक प्रश्न पूछते हैं कि जब भी आप भगवान के पास जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे, तो हे नारद, कृष्ण से जरूर पूछिए कि आपका निवास स्थान कहाँ है, अब एग्जैक्टली कहाँ निवास करते हो। तो भगवान ने नारद को जब प्रश्न पूछा तो भगवान कृष्ण कहते हैं नारद को नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनां हृदयेषु वहा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, तुम समझ लो कि नाहम तिष्ठामि वैकुंठे, एवं मैं वैकुंठ में भी निवास नहीं करता हूं, योगिनां हृदयेषु वहा, कई सारे योगी अपना सारा घर परिवार आदि को त्याग कर हिमालय की गुफाओं में जाते हैं, जंगल में जाकर निवास करते हैं और योग साधना करते हैं, ध्यान मग्न होते हैं, वो मुझे अपने हृदय में पकड़ना चाहते हैं, ऐसे योगियों के हृदय में भी मैं निवास नहीं करता हूं। तो भगवान कहते कि, फिर नारद कहते कि कहां करते हो आप निवास, तो भगवान कहते हैं यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां जहां मेरे भक्त मिलते हैं एक साथ और मिलकर मेरी जो महिमा है, मेरी जो गुण कथा है, श्रीमद् भागवतम आदि की चर्चा है, इसका वर्णन करते हैं और इसको गंभीरता से श्रवण करते हैं, हे नारद, मैं उस स्थान में स्वयं उपस्थित हो जाता हूं। तो इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। शास्त्र कहते हैं कि ये जगत में बहुत सारी चीजें सुलभ हैं, लेकिन दो चीजें बहुत दुर्लभ हैं। क्या है वो दुर्लभ चीजें? कि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करना और कृष्ण की सेवा का अवसर अपने जीवन में मिलना। ये जगत में कई प्रकार की चीजें हमें मिलती हैं, कई प्रकार के कार्य हम करते हैं जो सुलभता से अवेलेबल है, लेकिन वास्तव में एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दो चीजें हैं। वो दो चीजें क्या है कि उसका जब सौभाग्य का उदय होता है, सुकृति का उदय होता है, तो उस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का मौका प्राप्त होता है, भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, और दूसरा है कि भगवान कृष्ण की सेवा का अवसर जीवन में मिले। कई प्रकार की सेवा का अवसर तो व्यक्ति के पास है, हमारा जन्म होता है, मृत्यु तक हम कई प्रकार की सेवाओं में लगे रहते हैं, नाना प्रकार की, कोई देश की सेवा करता है, कोई समाज की सेवा करता है, कोई परिवार की सेवा करता है, किसी के पास कुछ नहीं करने के लिए तो घर में कुत्ते बिल्ली की सेवा करता है, तो लेकिन वास्तव में ये सारी सेवाएं तो हर एक व्यक्ति जीव लगा हुआ है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है सेवा करना, आत्मा का धर्म क्या है? सेवा करना। हमने तो कई धर्म बना लिए कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जहोवा है, कई सारे हैं, लेकिन वास्तव में आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो इस किसी कैटेगरी में नहीं आता है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? वो सेवा करना चाहता है, तो इसलिए आत्मा सेवा के बिना रह नहीं सकता, लेकिन वास्तव में वो ऐसी सेवा ढूंढता है कि जिस सेवा के द्वारा वो अपने जीवन में दिव्य आनंद की अनुभूति करे। तो ऐसी सेवा क्या है कि कृष्ण की सेवा में समर्पित हो जाना। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं
कि हे अर्जुन मच्छिता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब मुझमें प्रेम करने वाले या प्रेम रखने वाले जो लोग हैं वो जब आपस में एकत्रित होते हैं तो मेरे बारे में सुनना चाहते हैं, मेरे बारे में वर्णन करते हैं, और इस प्रकार से वो जो लोग हैं दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वो व्यक्ति सर्वाधिक सौभाग्यशाली है जो वास्तव में कृष्ण कथा को श्रवण करने की इच्छा रखता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि बहुत महाभाग्यवान, कोई सर्वसाधारण भाग्यवान नहीं। इवन भगवान की कथा ऐसी है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने बारे में सुनना चाहते हैं। जब भगवान कृष्ण वृंदावन में ब्रज में बहुत छोटे से बालक थे तो यशोदा माता शाम के समय में उनको सुलाया करती थी। तो एक दिन जब यशोदा माता बाल कृष्ण को सुला रहे थे तो सुलाते हुए कई प्रकार के गीत गाया करते थे, कई प्रकार की कथाएं उनको सुनाया करते थे। तो एक दिन यशोदा माता ने कृष्ण को बेड में लिटा दिया और साथ साथ उनके पास बैठ गई माता यशोदा, और कृष्ण के पास बैठकर कृष्ण को कहने लगी कि हे कृष्ण अब सुनो। क्या सुनाने लगी माता यशोदा कृष्ण को? भगवान राम के बारे में सुनाने लगी, वही श्री राम है। तो जब सुनाने लगी तो माता यशोदा ने कहा कि हे कृष्ण सुनो, एक महान राजा थे दशरथ, उनके कई सारे पुत्र थे, दशरथ की रानियां आदि थी, फिर उनके कई पुत्रों में से एक राम थे, उनका विवाह हो जाता है और कालांतर में जब वो वनवास के लिए जाते हैं और दंडकारण्य में है क्या होता है, उनकी जो पत्नी है सीता देवी उसका रावण अपहरण कर लेता है। जैसे ही यशोदा माता ये राम कथा का वर्णन करने लगी उसी क्षण जैसे यशोदा माता ने कहा कि सीता देवी का अपहरण हो गया है, अभी अभी कृष्ण लेटे हुए थे, थोड़ी सी रजाई ली होगी उन्होंने, ठंड के दिन होंगे, तो तुरंत ही जैसे सुना कि यशोदा सीता माता का अपहरण हुआ है तुरंत बेड पर खड़े हो गए और अपने हाथ ऐसे करते हुए चिल्लाने लगे, सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर क्वा धनुर, हे सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन कौन है? लक्ष्मण। उन्होंने कहा हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। तो माता यशोदा चकित हो गई, इसको हुआ क्या, इस बालक को मैं सुनाने के लिए सोने के लिए कृष्ण कथा या राम कथा सुना रही हूँ और ये सोया नहीं बल्कि और उत्साहित होकर खड़ा हो गया और धनुष मांग रहा है। तो वास्तव में वो कृष्ण कैसे हैं, भगवान राम की भावना में आ जाते हैं, इतना अधिक कृष्ण अपने बारे में श्रवण करने में निमग्न हो गए, इतने अधिक निमग्नता उन्होंने प्राप्त की। तो उस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि भगवान अपने बारे में भी श्रवण करने के लिए लालायित होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि मुझे वो भक्त बहुत अधिक प्रिय है जो मेरी कथा को सुनने का उत्साह रखता है। इसलिए भागवतम की शुरुआत में सूत गोस्वामी कहते हैं शुन्वता सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनहा रुदंतस्त ही अभद्राणी विधुनुति सुरुत्सताम, कि कोई व्यक्ति भगवत कथा को या श्रीमद् भागवत की कथाओं को सुनने में उत्साहित होता है या एकाग्रता प्रदर्शित करता है तो भगवान कहते कि हे परीक्षित मैं उस व्यक्ति के हृदय में चला जाता हूँ। भगवान हृदय में कैसे प्रवेश करते हैं? व्यक्ति के कान से प्रवेश करते हैं, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेन, भगवान कान के द्वारा व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करते हैं यदि हम भागवत की कथाओं को एकाग्रता से सुनते हैं और इस भावना से सुनते हैं कि वास्तव में मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हूँ, उनकी सेवा करने की भावना अपने हृदय में धारण करके कृष्ण कथा का जब श्रवण किया जाता है तो भगवान बहुत अधिक उस व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं। तो भगवान कहते हैं श्रुण्वता सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनहा, तो मेरे बारे में सुनना ही बहुत बड़ा पुण्य है। लोग पुण्य करने के लिए कई सारे कार्य करने लगते हैं लेकिन सर्वोत्कृष्ट जो पुण्य है वो यही है भगवान के बारे में श्रवण करना। श्रीमद् भागवतम को गंभीरता से और एकाग्रता के साथ सुनना, तो भगवान कहते उस व्यक्ति के हृदय में मैं प्रवेश करता हूँ, रुदंतस्तु ही अभद्राणी, और उस व्यक्ति के हृदय में जो गंदगी है। अभी कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरे हृदय में गंदगी नहीं है, लेकिन हम यदि अपने हृदय को एक बार झांकेंगे तो कितनी गंदगी हमारे हृदय में है। काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, मात्सर्य आदि, ईर्ष्या द्वेष आदि की भावना हमारे हृदय में कूट कूट के भरी है। इस भौतिक जगत को भोग करने की भावना हमारे हृदय में है। तो इसलिए जब हम श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं तो भगवान कहते हैं कि उस व्यक्ति के हृदय को मैं वास्तव में क्लीन करने लगता हूँ, सफाई करने लगता हूँ, जिसके द्वारा उस व्यक्ति का जो प्रेम है वो मुझ में हो जाता है। और वास्तव में ये जीवन हमें मिला है भगवान से प्रेम करना सीखने के लिए, क्योंकि हम अपने जीवन में कई वस्तुओं से प्रेम करते हैं। बचपन से हम एक चीज ढूंढ रहे हैं लाइफ में, क्या ढूंढ रहे हैं? प्रेम, आनंद। तो जो प्रेम नाम की जो वस्तु है वो बचपन से ढूंढ रहे हैं। जब हमारा जन्म होता है, माँ के गर्भ में हम होते हैं, तभी इतना कष्ट अनुभव करते कि कहते कि भगवान मुझे बाहर निकालो यहाँ से, और कहते कि जब आप बाहर निकालोगे इस कष्टमय स्थिति से तो बाहर निकलकर मैं आपकी कथाओं को श्रवण करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन जैसे जो इस जगत में बाहर आता है तो सब कुछ भूल जाता है, भगवान से प्रीति करना भूल जाता है, फिर बाकी चीजों में प्रेम ढूंढता है। पहले अपने माता पिताओं में ढूंढता है, फिर स्कूल के फ्रेंड्स में ढूंढता है, फिर कॉलेज में जाता है, फिर जॉब करने लगता है, फिर मैरिज हो जाता है, फिर सोचता है कि मैरिज लाइफ में भी प्रेम नहीं है तो बच्चों में प्रेम करने लगता है, फिर बच्चे भी विदेश जाकर सेटल्ड हो जाते हैं, कोई नहीं अभी घर में उसके पास, तो घर में एक कुत्ता रखता है, उससे प्रेम करने लगता है। तो मतलब यदि हम गंभीरता से देखें जीवन को, तो बचपन से लेकर अंत तक हम एक प्रेम को ढूंढ रहे हैं, और प्रेम नाम की वस्तु कौन है? कृष्ण है। आनंद नाम की वस्तु कौन है? कृष्ण है। इसलिए नंद के घर आनंद भयो, कि नंद के घर में आनंद ने जन्म लिया है, और वो आनंद वास्तव में हमारे लिए है, लेकिन हमें कृष्ण में आनंद नजर नहीं आ रहा है, कृष्ण से अलग होकर हम आनंद को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ये जगत में अवतरित होते हैं, और अवतरित होकर अपनी कई सारी जो लीला कथा है उनको प्रदान करते हैं। भगवान ये जगत में अवतरित होने के कई सारे कारण हैं। एक कारण तो यह है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु और दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं, और दूसरा कारण श्रीमद् भागवतम की शुरुआत में कहा गया है कि भगवान ये जगत में होकर जब अप्रकट हो जाते हैं तो अपने बाद अपनी जो लीला कहानी है, अपनी कथा है, उसको छोड़कर जाना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण कलयुग के पहले द्वापर युग के अंत में इस जगत में अवतरित हुए थे, और वृंदावन में कई सारी उन्होंने जो विशेष जो लीलाएं हैं उनका प्रदर्शन किया है। तो ऐसा जो भगवान की ऐसी जो लीला है, भगवान जब अप्रकट होते हैं, इस जगत से चले जाते हैं द्वापर के अंत में, तो शास्त्र कहते हैं कृष्णे सुधाम पगते धर्म ज्ञाना दिवि सहा। कृष्ण इस जगत से चले जाते हैं तो अपने साथ धर्म को भी ले जाते हैं, ज्ञान आदि को भी ले जाते हैं। तो कृष्ण की तुलना भागवतम में सूर्य से की गई है। जैसे सूर्य अप्रकट हो जाता है तो सारे जगत में अंधकार छा जाता है, तो उसी प्रकार से कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं तो कलयुग की शुरुआत में सारे जो जीव है वो अंधकारमय हो जाते हैं, वो सारे जीव अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और कलयुग के अंधकार में भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम को छोड़ते हैं। उन्हीं लोगों के लिए श्रीमद् भागवतम है जो कलयुग के अंधकार में वास्तव में टॉर्च लाइट या प्रकाश चाहता है, या कलयुग के खतरनाक सिचुएशन में अपने जीवन में आनंद चाहता है, या भगवान की ओर जाने का जो रास्ता है वो चाहता है, उस व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम भगवान छोड़ते हैं। कलो नष्ट दृशामेशाम, कलयुग के प्रभाव के कारण जिस व्यक्ति की आंखें अंधी हो गई हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम पुराणार्को अधुनो उदित, ऐसा श्रीमद् भागवतम एक सूर्य के भांति है, अरे भागवत नाम की वस्तु है क्या वास्तव में? हमें लगता है कि भागवत की कथाएं बहुत रोमांचकारी हैं, और हम सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत हमको हमें जहां तहां श्रवण करना चाहिए। लेकिन यदि हम देखें कि ये श्रीमद् भागवतम है एग्जैक्टली क्या है, तो शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय। कृष्ण में और श्रीमद् भागवतम में कोई अंतर नहीं है, श्रीमद् भागवतम ही साक्षात कृष्ण है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम भगवान हम सबके हित के लिए इस जगत में प्रदान करते हैं, और भगवान विशेष रूप से अप्रकट होने के बाद इस जगत में चार वस्तु में सदैव विराजमान होते हैं जो कृष्ण से अभिन्न है। एक है ग्रंथ श्रीमद् भागवतम, दूसरा है तुलसी देवी, और तीसरा है गंगा, और चौथी चीज है भगवान के जो भक्त हैं। तो इन चार चीजों में जो भगवान सदैव इस जगत में निवास करते हैं। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम की जो रचना है महामुनि व्यास ने की थी कलयुग के शुरुआत में, तो आज हम विशेष रूप से यही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इस जगत में श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य हुआ है, और किस प्रकार से राजा परीक्षित तत्पर हो गए श्रीमद् भागवतम को सुनने के लिए। तो ये श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् का मतलब क्या है? सुंदर, और भागवतम का मतलब है कि भगवान, या भागवतम वो वस्तु है जिसमें केवल भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में जो सेवा या प्रेम का आदान प्रदान है, जिसका वर्णन बहुत प्रचुर मात्रा में किया गया है, उस ग्रंथ को श्रीमद् भागवतम कहा गया है। तो ऐसे भागवतम की सुंदरता एक ही है कि ऐसा श्रीमद् भागवतम कोई और चीज की शिक्षा नहीं देता व्यक्ति को। व्यास देव ने बहुत सारे पुराणों की रचना की, अलग अलग 18 पुराण आदियों की रचना की, लेकिन वो पुराण कई प्रकार के विषयों की चर्चा करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम केवल एक ही वस्तु की चर्चा करता है कि किस प्रकार से ब्रजेंद्र नंदन या वृंदावन के जो कृष्ण है, श्याम सुंदर त्रिभंग ललित कृष्ण, उनसे प्रीति की जाए। तो इसलिए इस भागवतम को अमल पुराण कहा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं है, किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं है। जनरली हम कथाओं को सुनते हैं, कथाओं का ऑर्गेनाइज करते हैं, या मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, उन सब चीजों के पीछे हमारा हेतु होता है, कुछ ना कुछ हेतु होता है कि मुझे धन चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, पति चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। लेकिन श्रीमद् भागवतम इन सारी चीजों को उस भक्त के हृदय से हटा देता है, और वो केवल भगवान कृष्ण से प्रेम करने की जो सर्वोत्कृष्ट जो स्थिति है या भावना है, वो उस व्यक्ति के हृदय में प्रदर्शित करता है। इसलिए कहा गया है धर्मो प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, कि ऐसा श्रीमद् भागवतम केवल भगवत धर्म की व्याख्या और शिक्षा प्रदान करता है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम श्रवण करने के लिए अलग अलग जो ऋषि मुनि हैं वो सदैव लालायित रहते हैं। इवन ये श्रीमद् भागवतम कलयुग की शुरुआत में सबसे पहले श्रीमद् भागवतम बोला गया कहा हस्तिनापुर या दिल्ली के पास ही गंगा नदी के किनारे में। आज आप मेरठ की ओर जाते तो वह शुकताल नाम का स्थान है, वो वृक्ष आदि है जहाँ शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम की कथा का वर्णन किया था। और ये ऐसा कभी नहीं था कि 7 दिवस की भागवत कथा है, भागवतम कभी 7 दिनों का वर्णन नहीं करता है शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो। भागवतम कहता है बल्कि 7 दिन इसलिए है कि परीक्षित महाराज के पास अवधि नहीं बची थी, उनके पास तो 7 दिन थे, इसलिए शुकदेव गोस्वामी ने कंडेंस फॉर्म में भागवतम की कथा का प्रस्तुतिकरण किया। लेकिन उसके बाद बल्कि भागवत कहता है कि भागवतम को तो नित्य हर रोज श्रवण करना चाहिए, अपने पूरे जीवन भर भागवतम को सुनना चाहिए। इसलिए भागवत की शुरुआत के श्लोक में वर्णन आता है नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम ये नहीं कहा कि 7 दिन भागवत सेवया। तो कई बार हमें ये गलत फहमी होती है कि श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में 7 दिन के लिए है। नहीं, श्रीमद् भागवतम हमारे जीवन में कितने दिन के लिए है? हमेशा के लिए है, जब तक हमारे पास प्राण है, जब तक हमारे पास लाइफ है। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम की जो श्रवण करने की लालसा है, वो कलयुग की शुरुआत में 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में एकत्रित हुए थे। और ऐसे ऋषि मुनियों की एक ही योजना थी, वो सारे ऋषि मुनि यही चाहते थे कि आने वाला ये जो कलयुग है वो बहुत भयावह है। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रता, कि कलयुग के जो लोग है उनकी आयु बहुत कम होगी, 100 साल के लोग होंगे। भागवतम में वर्णन आया है कि आगे चलकर लोगों की आयु कलियुगा में 20 साल की होंगी, 4 साल में बच्चे पैदा करना शुरू हो जाएंगे और 10 साल में बुढ़ापा आ जाएगा, 15 साल में मरना शुरू हो जाएंगे। तो कलियुगा में आयु छोटी हो जाएगी। प्रायण अल्पायुषा सभ्य, हम अभी देखते हैं हमारे जो पुराने लोग है वो 100 साल तक जीवित रहते थे, अभी शहर के लोग 60-70 साल 30 साल हो जाते हैं तो बुढ़ापे के लक्षण नजर आते हैं, 40 साल में सारी हड्डियां दर्द करने लगती हैं, सीधा बैठना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये सब क्या है? कलयुग के लक्षण है। तो जब ये सारे ऋषि मुनियों ने इस कलयुग की दयनीय स्थिति को देखा तो उन्होंने सोचा कि कलयुग के जीवों का हित करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। तो ऐसे 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए, क्योंकि भगवान के जो भक्त है वो सदैव दूसरों के कल्याण की कामना करते हैं, वो अपने लिए जीवित नहीं रहते। वास्तव में व्यक्ति दुखी क्यों है, अपने जीवन में सुख अनुभव क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो अपने लिए जी रहा है, अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए जी रहा है। जब हम दूसरे के लिए जीना सीखते हैं, त्याग की भावना हमारे हृदय में होती है, तब हम वास्तव में सुख की अनुभूति करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण एक बार अपने सखाओं के संग में जब गोचारण करने के लिए गोवर्धन पर जा रहे थे गौवों को लेकर, तो बलराम उनके संग थे, कई सारे ग्वाल बाल उनके साथ थे। तो जाते जाते भगवान कृष्ण ने वृक्षों को देखा, तो जैसे कृष्ण बलराम चल रहे थे तो सारे पेड़ नीचे झुक गए और भगवान को प्रणाम करने की मुद्रा में झुक गए और अपने फल और जो फूल आदि है वो अर्पित करने के लिए तत्पर हो गए। तो कृष्ण ने कहा, हे बलराम बलराम, देखो ये सारे वृक्ष तुम्हें प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं, तुम्हें पुष्प फल आदि अर्पित कर रहे हैं। तो बलराम कहते, नहीं नहीं, ये तो तुम्हें कर रहे हैं। कृष्ण कहते, नहीं, तुम बड़े हो, तुम महापुरुष हो, तुम्हें कर रहे हैं। तो भगवान फिर उन वृक्षों का गुणगान करने लगे। कृष्ण ने कहा, देखो बलराम, ग्वाल बालों के सामने कहा कि देखो इन वृक्षों को देखो कि इनके अंदर कितनी बड़ी दूसरों के लिए जीवित रहने की भावना है। इनका जो पूरा शरीर है, उनका जीवन है, वो केवल दूसरों के कल्याण के लिए है। इनके जो फल है, टहनिया है, लकड़ आदि है, हाँ, ये सारी चीजें किसके इस्तेमाल के लिए आती है? मनुष्यों के लिए। उनका कुछ भी ऐसा बॉडी अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते, हाँ, सारी चीजें दूसरों के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि व्यक्ति को इस प्रकार से जीवित रहना चाहिए। भगवान ने कहा कि सदैव एक व्यक्ति को दूसरों के लिए कार्यरत होना चाहिए या मेरी भक्ति में लगा रहना चाहिए। पहली चीज भगवान ने कही, प्राणेर, व्यक्ति को कुछ लगाना है भगवान की सेवा में, तो भगवान कहते कि मेरी सेवा में अपना लाइफ लगाओ, प्राण लगाओ अपना मेरी सेवा में। बलराम को कृष्ण कहते चलते चलते ग्वाल बालों के संग में, और यदि भगवान कहते आपके पास प्राण नहीं है, आपको डर लग रहा है कि अरे मैं अपना लाइफ प्राण कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, तो भगवान कहते प्राणेर नहीं लगा सकते हो तो अर्थेर लगाओ, अर्थे में अपना अर्थ लगाओ। हमारा प्राण किस में लगा रहता है? कई बार धन में, अपने घर में, अपनी संपदा में हमारा प्राण लगा रहता है। इसलिए कहते ना, चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए, क्योंकि हमारा प्राण उसमें अटका हुआ है। तो भगवान ने कहा प्राण लगाओ, प्राण नहीं लगा सकते तो अपना अर्थ लगाओ। कोई व्यक्ति अर्थ नहीं लगा सकता तो धिया में से अपनी बुद्धि लगाओ मुझमें। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, भगवान कहते कि ठीक है, भगवान कहते कि फिर क्या लगाओ? वाचा, अपनी वाणी को मेरी सेवा में लगाओ। तो इस प्रकार से भगवान उन वृक्षों का गुणगान करते हुए हम सबको ये शिक्षा प्रदान करते हैं। तो उसी बात ही ये जो 88,000 ऋषि है कलयुग की शुरुआत में यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, और वो सारे बड़ा यज्ञ कर रहे थे और उन ऋषियों के प्रमुख थे जिनका नाम था शौनक ऋषि। तो ये सब लोग यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ से बहुत धुआं निकल रहा था और वो धेय से सारे जो ऋषि हैं उनका मुख काला हो गया। तो उनको समझ में नहीं आया कि करना क्या है हमें एग्जैक्टली कलियुगा में। तब वास्तव में सुत गोस्वामी आते हैं और सुत गोस्वामी से वो सारे पूछते हैं और सुत गोस्वामी से निवेदन करते हैं कि हे सुत गोस्वामी, अपने शुकदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज को भागवतम गंगा के किनारे सुनाई थी उस समय आप सबसे आगे बैठे थे और एकाग्रता के साथ, गंभीरता के साथ, निष्कपट भावना से, सरलता के साथ आपने श्रीमद् भागवतम को सुना था, वही श्रीमद् भागवतम आप क्या करो, हमें सुनाओ। हाँ, ये वैसे ही है। हाँ, जैसे बछड़ा गाय का दूध पीना है तो क्या करता है, जाकर गाय के स्तनों को पीता है तो जोर जोर से मारता है अपना मुंह तो उससे क्या होता है, दूध और निकलता है। तो उसी भांति ये जो शौनक आदि ऋषि हैं सुत गोस्वामी को निवेदन कर रहे हैं, उनसे याचना कर रहे हैं, अपनी जिज्ञासा प्रदर्शित कर रहे हैं, श्रवण करने का उत्साह दिखा रहे हैं, जिसके द्वारा सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को बताने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और ऐसे सुत गोस्वामी सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का वर्णन करने के पूर्व अपने जो आध्यात्मिक गुरु है शुकदेव गोस्वामी उनको वंदन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि मैं ऐसे शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ जो श्रीमद् भागवतम को सारे जगत को प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से इन सारे शौनक आदि ऋषि ने सर्वप्रथम सुत गोस्वामी से निवेदन किया कि हमें श्रीमद् भागवतम सुनाइए कि कौन से काल में, कौन से समय में, कौन से स्थान में ये भागवतम सुनाया गया या श्रीमद् भागवतम की रचना की, क्यों ये भागवतम ग्रंथ की रचना की, किसने की, क्या कारण रहा, महत्वपूर्ण कारण। और परीक्षित महाराज जो भारत वर्ष के राजा थे, क्या ऐसी घटना हुई जिनको 7 दिन में मृत्यु उनके नजदीक खड़ा हो गया और उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से भागवत सुनी। तो इन सारी जिज्ञासाओं का वर्णन आप हमें कीजिए। तो इस प्रकार से ये सारे ऋषि मुनि जब उनको पूछने लगे तो सुत गोस्वामी व्यासदेव और शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम करते हैं और फिर सारी घटना का वर्णन करते हैं। तो सुत गोस्वामी कहते हैं कि एक बार ये भागवतम आया कैसे ये जगत में, भागवतम हमेशा नित्य है, जिस प्रकार से भगवान नित्य है, भगवान का कोई जन्म नहीं है और भगवान की कोई मृत्यु नहीं है, भगवान की तुलना सूर्य से की गई है, सूर्य जैसे आज नहीं कि सूर्य अभी कल जन्म लेगा और अभी सूर्य मर गया, ऐसा कहते हैं हम नहीं, सूर्य उदित हो गया और सूर्य का अस्त हो गया, सूर्य फिर से कल अवेलेबल है। तो उसी पाती भगवान प्रकट होते हैं और हमारे आंखों से ओझल हो जाते हैं, उसे अप्रकट कहा जाता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी प्रकट होता है और कुछ समय के लिए हमारे आंखों से अप्रकट हो जाता है, ओझल हो जाता है। तो ऐसे सुत गोस्वामी ने वर्णन करना शुरू किया और उन्होंने कहा कि एक बार सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव, कृष्ण द्वापायन व्यास, भगवान कृष्ण के साहित्यिक अवतार, क्योंकि व्यासदेव हमेशा हिमालय में बद्री काश्रम या बद्रीनाथ आप जाते हैं तो व्यास गुफा आदि है उस स्थान में व्यासदेव हमेशा निवास करते हैं सरस्वती के नदी के तट पर। तो ऐसे सरस्वती नदी के तट पर व्यासदेव एक दिन सुबह सुबह उठे और जाकर स्नान और आचमन उन्होंने किया और एकाग्रता में बद्री काश्रम में, जिसको शम्याप्रास भी कहा जाता है, वहां बैठकर ध्यान मग्न होकर सोचने लगे। तो उन्होंने देखा और ये समय कौन सा था, द्वापर का अंत के समय में या कलयुग की शुरुआत के समय में। तो जैसे ही व्यासदेव ये ध्यान मग्न हो गए तो उन्होंने आगे आने वाला जो युग है उसके कार्यकलापों को देखा कि इस कलयुग बहुत भयावह है और कलयुग के लोग हमेशा 3 प्रकार के कष्टों से तपी तप्त रहेंगे, दुखी रहेंगे, ऐसे लोग कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। इस विचार से उन जीवों का कल्याण करने हेतु तो जो व्यास देव है वो सोचने लगे। ऐसा सोचते सोचते उनके हृदय में विचार आया तो फिर उन्होंने क्या किया, सारे ग्रंथों को लिखित रूप प्रदान किया। पहले जितने भी ग्रंथ थे उनको, वो तो श्रुति परंपरा से अवेलेबल थे, श्रुति का मतलब है केवल गुरु बोलते थे और जो शिष्य है वो सुना करते थे, जिससे ये जो परंपरा आगे बढ़ती थी। लेकिन समय के साथ देखा कि कलियुगा के लोग सुनकर याद नहीं रख सकते, तो व्यास देव ने सबसे पहले सारे ग्रंथों को लिखित रूप प्रदान किया। उन्होंने वेदों का रचना की। सबसे पहले एक ही वेद था, यजुर्वेद। फिर उन्होंने उसका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसे चार वेदों में उनका परिवर्तन किया। और फिर देखा कि स्त्रिया आदि और शूद्र लोग वेद, उपनिषद आदि ये दिव्य ज्ञान को नहीं समझ सकते, तो उन्होंने महाभारत नामक ग्रंथ की रचना की। फिर महाभारत आदि की रचना करने के बाद व्यासदेव बहुत अधिक दुख महसूस कर रहे थे। उन्होंने पुराणों की भी रचना की और उन्होंने सोचा कि मैंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, इतना सारा मैंने परिश्रम किया है, इतनी सारे सेवा आदि की है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कुछ कमी है, मेरे जीवन में कुछ अपूर्णता है, कुछ कमी मुझे महसूस हो रही है। जैसे हम भी देखते हैं, कोई व्यक्ति अपना पूरा जीवन जीता है, उसके पास सारी भौतिक सुविधाएं आती हैं, फिर भी व्यक्ति को लगता है कि अरे मेरे जीवन में क्या है, कुछ कमी है, कुछ चीज की मेरे जीवन में आवश्यकता है, मैं अपूर्णता महसूस कर रहा हूं। तो उसी भांति व्यास देव ने इतना सारा किया, वेद, उपनिषद, पुराण आदि की रचना की, महाभारत की भी रचना की, सबके कल्याण हेतु सारे कार्य आदि दे दिए, लेकिन फिर भी उनको आनंद की मैं अनुभूति नहीं हो रही थी। तो फिर वो दुखी होकर उस नदी के किनारे बैठे, तो उसी समय कौन आते हैं वहां, उनके आध्यात्मिक गुरु नारद आते हैं। और नारद इस व्यासदेव को देखकर हंसने लगते हैं कि अरे व्यासदेव, तुमने इतने सारे ग्रंथ आदि की रचना की, फिर भी तुम अपूर्णता महसूस कर रहे हो, तुम दुखी हो। तो व्यासदेव ने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि व्यासदेव ने एक चीज सोची थी कि मुझ में एक कमी है। उन्होंने क्या सोचा, किम्वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, प्रिया परमहंसानाम तएव अच्युत प्रिया। शायद मेरी एक कमी क्या है, अपने जीवन में मैंने भागवत धर्म या श्रीमद् भागवतम का वर्णन नहीं किया है, या भगवान और उनके भक्तों का गुणगान नहीं किया है अधिक मात्रा में। क्योंकि व्यासदेव ने इतने सारे पुराण लेके, शिव पुराण, दुर्गा पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वायु पुराण, लिंग पुराण, इतने सारे पुराण लिखे, उनमें अलग अलग पुराणों में लोगों को भ्रमित कर दिया कि करना क्या है, वो कुछ क्लियर बताया नहीं। शिव पुराण में शिव की महिमा बता दी, दुर्गा पुराण में दुर्गा के बारे में बता दिया, अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीजें बताई, और लेकिन जो फाइनल कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो किसी चीज में नहीं बताया, वर्णन नहीं किया। तो सारा जगत भ्रमित हो गया था, उन्होंने भगवान का वर्णन अधिक मात्रा में नहीं किया था, इसी कारण से वो दुखी थे। उन्होंने सोचा, मेरे दुख का कारण यही है कि मैंने भगवान का गुणगान नहीं किया है, जो भगवान के भक्तों को प्रिय है और भगवान को भी प्रिय है। तो इस प्रकार से वो सोचने लगे व्यासदेव। और फाइनली जब उनके सामने नारद आते हैं, तो नारद देखकर, व्यासदेव को देखकर हंसने लगते हैं, और व्यासदेव को कहते कि तुम्हारी बीमारी एक ही है, तुमने भगवान का गुणगान नहीं किया है। कृष्ण की वृंदावन की जो लीलाएं हैं, उनकी महिमा है, उनका वर्णन नहीं किया है। तो फिर व्यासदेव इस बात को सुनकर दुखी हो जाते हैं। और नारद मुनि के जाने के उपरांत व्यासदेव क्या करते हैं, श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की रचना करते हैं। और भागवतम क्या है, केवल भागवतम श्री कृष्ण का गुणगान करता है। भागवतम के तीसरे अध्याय में कृष्ण के 25 अवतारों का वर्णन करने के बाद सूत गोस्वामी कहते हैं, एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इतने जो अवतार आदि हैं, ये तो कृष्ण के अंश और कला है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम की रचना व्यास देव ने जगत के हित के लिए की। और फिर उन्होंने सोचा, ये भागवतम इतना दिव्य ग्रंथ है जो केवल कृष्ण की महिमा का वर्णन करता है, तो उन्होंने सोचा फिर इसका वर्णन करने के लिए कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए, कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए जो भागवतम को सारे जगत में प्रस्तुत करे। आजकल तो भागवतम क्या किया है लोगों ने, अपने उपजीविका का साधन बना लिया है, धंधा बना लिया है, धन अर्जन करने का एक कार्यक्रम बना लिया है। हाँ, तो ये भागवतम ऐसा नहीं है। भागवतम पद्म पुराण में भागवतम से कोई व्यक्ति धन अर्जन करके बिजनेस की भावना से भागवत कथा का वर्णन करता है तो उसके लिए शास्त्र कहते हैं उसके लिए तो नरक तैयार है। हाँ, तो भागवतम केवल शुद्ध रूप से भगवान को प्रसन्न करने का माध्यम है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम के लिए कोई योग्य व्यक्ति होना चाहिए। तो शुकदेव व्यास देव ने सोचा कौन हो सकता है, तो उनको उन्होंने सोचा एक ही व्यक्ति हो सकता है। कौन है? उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी। कौन? शुकदेव गोस्वामी। तो ये शुकदेव गोस्वामी कौन है? शुकदेव गोस्वामी वो है जो जब द्वापर के अंत में राधा कृष्ण वृंदावन में अपने दिव्य लीलाएं प्रकट कर चुके थे तो श्रीमती राधा रानी के हाथ में एक तोता हमेशा हुआ करता था। उस तोते को श्रीमती राधिका हमेशा फ्रूट्स आदि खिलाते थे और कहते थे कि हे शुका, शुक का मतलब तोता, तुम क्या करो, गोविंद दामो धर माधवेती, अब कृष्ण के नामों का उच्चारण करो। तो जब राधा कृष्ण इस जगत से द्वापर के अंत में अप्रकट हुए हैं और कलयुग की शुरुआत हुई तो राधा कृष्ण ने इस तोते को कहा कि हे शुक, तुम क्या करो, भागवत कथा का वर्णन करो कलियुगा में। तो अभी ये जो तोता बहुत दुखी हो गया, राधा कृष्ण इस जगत से चले गए, अप्रकट हो गए, अपने गोलोक वृंदावन धाम में चले गए। तो फिर ये तोता भ्रमण करने लगा कि कहां भागवत कथा हो रही है, कहां कृष्ण कथा का वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसे भ्रमण करते करते वो तोता एक स्थान में पहुंचता है जहां श्रीमद् भागवतम का वर्णन शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को कर रहे थे। ऐसे नहीं कि भागवत कुछ कुछ लोग सुनते हैं, बल्कि महान महान देवी देवता भी भागवत की कथा को सुनने के लिए उत्साहित रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो जो एकाम्र कानन नाम का स्थान है, आज का जो भुवनेश्वर है, वहां शिवजी अपनी पत्नी पार्वती को भागवत कथा का वर्णन कर रहे थे और पार्वती देवी गंभीरता से भागवतम की कथा को सुनती जा रही थी। तो उसी समय ये जो तोता है ढूंढते ढूंढते उस आम के पेड़ पर जाकर बैठता है और श्रीमद् भागवतम की कथा को सुनता है। और उस समय पार्वती देवी कथा को सुनते सुनते सो गई। जैसे हम भी कथा में क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे आंखें बंद करने लगते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई रुचि नहीं है। तो फिर वो जो तोता है वो श्रवण कर रहा था भागवत कथा का और सुनकर जब देखा, अरे पार्वती तो सो गई है मेरे सामने, शिवजी ने देखा, क्योंकि शिवजी और पार्वती कुछ और नहीं करते, हमेशा भागवत कथा को बोलते हैं या तो सुनते हैं और हमेशा कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। हाथ ऊपर कीजिए, सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसी भागवत कथा का वर्णन शिवजी हमेशा करते हैं। तो ये जो तोता है उस आम के वृक्ष में बैठकर भागवतम को शिवजी के मुख से सुन रहे था। तो फिर शिवजी ने देखा पत्नी तो सो रही लेकिन वहां से कोई सुन रहा है, तो वो तोता था। तो वो तोते के पीछे शिवजी लगे, तो तोता जाकर बद्रिक आश्रम में गया उड़ते उड़ते, वहां भी भागवत कथा हो रही थी, व्यासदेव अपने पत्नी को सुना रहे थे और वो पत्नी भी उवासी या जमाई दे रही थी मुंह खोल के भागवत की कथा में, अब वो थक गई थी। तो उनके पेट में जाकर ये तोता चला जाता है और बाद में हम देखते हैं कि बाद में आगे चलकर व्यास देव के पुत्र के रूप में वो कौन प्रकट होता है, राधा रानी का जो तोता है शुकदेव गोस्वामी के रूप में इस जगत में प्रकट होते हैं। तो व्यास देव के जो पुत्र उनके पत्नी के गर्भ में थे वो बाहर नहीं आना चाह रहे थे, क्योंकि व्यास देव को एक व्यक्ति चाहिए था जो भागवत कथा का वर्णन करे शुद्ध रूप से, बिना किसी हेतु के, बिना किसी कपटता के, मिश्रित भावना के। तो लेकिन वो जो बालक है उनके पत्नी के गर्भ में वो तो बाहर आना नहीं चाह रहा था, 16 साल का हो गया फिर भी उनके पत्नी के गर्भ में है। कौन? शुकदेव गोस्वामी। व्यास देव कहते अरे बेटा बाहर आ जाओ, अंदर से बातें करते वो कि नहीं नहीं बाहर ना माया है, बाहर आऊंगा तो कृष्ण को भूल जाऊंगा, कृष्ण की सेवा को भूल जाऊंगा, भगवान को भूल जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। तो इस प्रकार से वो जो शुकदेव गोस्वामी है वो बाहर आना नहीं चाह रहे थे। व्यासदेव ने कहा नहीं नहीं बाहर आओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ। वो कहते तुम भी तो माया के प्रभाव में हो, आप कैसे जिम्मेदारी ले सकते हो मेरी। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो माया का कंट्रोलर है। तो भगवान व्यास देव ने कहा कि द्वारका में कृष्ण है, उस समय कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे थे, कहा द्वारकाधीश यहाँ है। तो फिर उन्होंने द्वारकाधीश कृष्ण को बद्री का आश्रम बुलाया और कृष्ण ने कहा शुकदेव गोस्वामी बाहर आइए, आपको बहुत बड़ा कार्य करना है, भागवत का वर्णन करना है। तो शुकदेव गोस्वामी बाहर आते हैं अपनी माता के गर्भ से और दौड़ने लगते हैं। अभी जन्म लेते ही बालक दौड़ने लगे तो माता पिता तो परेशान हो जाएंगे, किसी हॉस्पिटल में ऐसी घटना घटित हुई है, असंभव है। तो यार शुकदेव गोस्वामी ने जन्म लिया और दौड़ने लगे, उनके पीछे उनके पिताजी व्यासदेव मुनि दौड़ने लगे और बिल्कुल निर्वस्त्र थे शुकदेव गोस्वामी। दौड़ते दौड़ते गए एक जलाशय के किनारे से, जंगल में दौड़ते हुए गए और फिर जाने के बाद वहां से व्यासदेव भी गए। तो उस जलाशय में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो ये शुकदेव गोस्वामी दौड़ के गए तो उनको देखकर उन स्त्रियों को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब व्यासदेव वहां से गए तो उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र डाल लिए अपने शरीर पर। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि ये शुकदेव गोस्वामी ऐसा व्यक्ति है जो शारीरिक धरातल से परे है, देहात्म भावना से परे है कि मैं ये शरीर हूं, इस भावना से परे है। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी भाग गए। तो व्यासदेव ने सोचा कैसे इनको बुलाया जाए। हाँ, यही एक व्यक्ति है कृष्ण की महिमा का वर्णन उचित रूप से कर सकता है। तो व्यासदेव ने क्या किया, भागवत के दो श्लोक चूज किए और इन दो श्लोकों को उन्होंने भेजा अपने शिष्यों के साथ और कहा कि उनका जाकर गान करो। तो फिर भागवतम के दो श्लोक जाकर उनके जो शिष्य हैं वो गान करने लगे। एक श्लोक था अहो बकियम स्तन काल कूटम, हाँ कि ये जो पूतना है जब कृष्ण को मारने के लिए आए तो उन्होंने अपने स्तनों को कालकूट विष लगाया हुआ था, लेकिन भगवान ने उसका स्तन पान किया, दूध का पान किया, ये सोचा कि ये मेरी सेवा करने के लिए आए हैं माँ की भावना को लेकर, तो भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया। कमवा दयालुम शरणम रजेत, कि कहते हैं व्यासदेव कि ऐसा कौन ही जगत में दयालु है कि जो व्यक्ति आपको विष पिलाने आया हो उसको आप बहुत आदर सम्मान देकर आप अपने साथ रखते हो, ऐसा कोई है दयालु नहीं। तो भगवान कृष्ण ने पूतना को भी जो विष पिलाने आई आध्यात्मिक जगत वृंदावन में या गोलोक वैकुंठ में, वहां अपनी माता के रूप में उनको स्थान प्रदान किया है। और दूसरा श्लोक था जिसमें उन्होंने कहा बरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिब्रद वासम, तो वो कहते हैं कि ऐसे कृष्णा जिन्होंने मोर पंख धारण किया है और अपने हाथों में बांसुरी रखी हुई है, कान में कुंडल है, मकर कुंडल है, और कान के ऊपर एक विशेष फूल कर्णिकार नाम का फूल जो धारण करते हैं, गले में वैजयंती माला धारण करते हैं, पीताम्बर आदि वस्त्र पहनते हैं, और जब अपने सखाओं के संग में गवों को लेकर वृंदावन में गो चराने के लिए निकलते हैं तो उनके सारे सखा उनका गुणगान करते हुए ब्रज में मनो में प्रवेश करते हैं। तो ये भगवान की सुंदरता का वर्णन किया उन श्लोक में। तो ऐसे ये जो शुकदेव गोस्वामी जंगल में भ्रमण कर रहे थे, इन दो श्लोकों को सुनकर एक तो भगवान का सौंदर्य और दूसरा कृष्ण की दया की भावना, इसको सुनकर वो वापस आ जाते शुकदेव गोस्वामी व्यास देव के पास और व्यास देव से श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं और फिर ये श्रीमद् भागवतम आगे चलकर वो प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि इस प्रकार से वास्तव में श्रीमद् भागवतम इस जगत में प्रकट हुआ था। और बाद में जब द्वापर के अंत में महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कुंती से प्रार्थना की थी कि हे कुंती, इस महाभारत के युद्ध में मैं आपसे आपके पांच पुत्र मांग रहा हूँ और मैं ये वचन देता हूँ कुंती कि आपके पांच पुत्र मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उनके ऊपर एक खरोच भी नहीं आएगी, वापस तुम्हें लाकर मैं प्रदान करूंगा, ये कृष्ण की वचनबद्धता है। तो महाभारत के युद्ध के उपरांत भगवान उन कुंती के पांचों पुत्रों को लाकर कुंती के चरणों में समर्पित करते हैं और उसके बाद जब कुंती महारानी कहती है कि हे कृष्ण, आप द्वारका को छोड़कर चले जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, तो कृष्ण द्वारका में जाते हैं और वहां जाकर निवास करते हैं और उनके निवास करने के बाद कुछ ही दिनों में हाँ, जो भगवान कृष्ण है महाभारत के युद्ध के उपरांत अप्रकट हो जाते हैं, इस जगत से चले जाते हैं, ये जगत को छोड़कर चले जाते हैं। तो जैसे ही अर्जुन युधिष्ठिर आदि को पता चला कि कृष्ण इस जगत में नहीं रहे हैं, तो उन्होंने सोचा हमारे जीवन जीवित रहने का क्या लाभ, हमें भी इस जगत से चले जाना चाहिए। तो उसी क्षण युधिष्ठिर महाराज अपने राज वस्त्र आदि को त्याग देते हैं, सर्वसाधारण वस्त्र धारण करते हैं, हाँ, और हाथ में डंडा लेकर हस्तिनापुर से बाहर निकलते हैं। किसी अपने भाई से बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा यदि हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है तो हमारे पास जो राज्य है, धन है, संपदा है, ये जो ऐश्वर्य है, यश है, ये किस काम का है? तो ये कृष्ण जीवन में नहीं है तो ये चीजें भी हमारे लिए उचित नहीं है। तो उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने राज पाट आदि को त्यागा, और फिर भीष्म, ये जो अर्जुन है, नकुल, सहदेव, भीम, ये भी उनके पीछे चलने लगे। फिर द्रौपदी ने देखा मेरे पति आगे जा रहे हैं, वो भी उनके पीछे निकल पड़े, और फिर कुंती महारानी भी। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने राजपाट आदि को त्यागा, और फिर जाने से पूर्व युधिष्ठिर महाराज ने अपने वंश के जो आखिरी पुत्र है, हाँ, जो उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के पुत्र हम परीक्षित महाराज को इस भारत वर्ष का राजा बना दिया उन्होंने। तो परीक्षित महाराज का जन्म बहुत विशेष रूप से हुआ है। परीक्षित महाराज जो उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा था इस भावना से कि मैं ये पांडवों से बदला लेकर रहूंगा, पांडवों का जो आखिरी वंशज है उसका विनाश करूंगा। तो वो जो ब्रह्मास्त्र उन्होंने जो अस्त्र छोड़ा था, जो उनके गर्भ में जो परीक्षित बालक थे उत्तरा के, उनका विनाश करने के लिए, तो उत्तरा जब गर्भवती थी तो उन्होंने देखा कि कोई एक अस्त्र मेरी ओर आ रहा है और मेरे गर्भ का विनाश करने वाला है। तो उस समय कृष्ण हस्तिनापुर से रथ के ऊपर बैठकर निकलने वाले थे, सारे लोग उनको बाहर छोड़ने के लिए राजपथ में एकत्रित हुए थे। उसी समय जो उत्तरा है जोर जोर से चिल्लाती हुई अपने महल से भागती है और वो कहती है पाही पाही महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम तदभयम पश्यत यत्र मृत्यु परस्परम। वो कहते कि हे महायोगी कृष्ण, मैं अपने सामने अपने मृत्यु को देख रही हूं, बल्कि मुझे अपने मृत्यु की इतनी चिंता नहीं है, मुझे अधिक चिंता किसकी है, मेरे कोख में जो बालक है, पांडवों का जो आखिरी वंशज है, भारत वर्ष का जो राजा है, उसकी अधिक चिंता है। इस भावना से रोते हुए कृष्ण को पुकारते हुए बाहर आए, बल्कि वो बाकियों को पुकार सकती थी, उनके सामने अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कृष्ण के अलावा इस जगत में कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे द्रौपदी ने सारे बड़े बड़े धनुर्धर उनके सामने थे, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तब उसने किसको पुकारा, कृष्ण को। कृष्ण उस समय द्वारका में थे और रुक्मिणी के महल में भोजन कर ही रहे थे तो रुक गए, ऐसे हाथ उन्होंने रखा जिसमें भोजन था, भोग ग्रहण कर रहे थे। तो रुक्मिणी ने पूछा कि हे द्वारकाधीश क्या हो गया, अचानक आप रुक गए भोजन करते करते। उन्होंने कहा जो मेरी प्रिय भक्त है द्रौपदी है वो संकट में है और वो मुझे पुकार रही है, रोदन कर रही है, मुझे मेरी सहायता मांग रही है। हाँ, लेकिन भगवान ने तुरंत अपना सारा छोड़ देते हैं और दौड़ने लगते हैं द्रौपदी के लिए। तो किसी ने पूछा कृष्ण आप क्यों इतने तीव्रता से दौड़े, वो कहते कि इसलिए दौड़ा क्योंकि मुझे आने के लिए द्रौपदी ने आंसुओं का रास्ता बना लिया था, इसलिए मैं तीव्र गति से हस्तिनापुर पहुंचा हूं। किसकी हेल्प करने के लिए, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार से द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है, हे यदु, हे द्वारकाधीश आदि से आदि नामों से। उसी भांति उत्तरा ने भी पुकारा भगवान को कि मेरे बालक की रक्षा कीजिए। तो भगवान कृष्ण उसी क्षण अपना चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। हाथ में गदा लेकर भगवान इतने छोटे हो जाते हैं, क्योंकि हम सबके हृदय में भगवान है, किस रूप में निवास करते हैं, परमात्मा के रूप में। उनका साइज हर एक व्यक्ति का अंगूठे का ये जो अग्रभाग का साइज है इतना बड़ा होता है, हाँ, भागवतम वर्णन करता है। तो भगवान जब उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए हैं, आपने हाथ में गदा लेकर परीक्षित महाराज जो छोटे से बालक उनके गर्भ में थे उनके चारों ओर घूमने लगे गदा को लेकर, और जो ब्रह्मास्त्र जो सारे ब्रह्मांड का विनाश करने का सामर्थ्य रखता है उस ब्रह्मांड से ब्रह्मास्त्र से जो कृष्ण है हम परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी रक्षा की और परीक्षित ने देखा अपनी माता के गर्भ में भगवान को देखा कि गदा को लेकर एक मुकुट आदि धारण किया हुआ है, ऐसे सुवर्णमय तेजवान व्यक्ति को उन्होंने देखा कि अरे कोई मेरी रक्षा कर रहा है। और बाद में जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो उनका नाम परीक्षित क्यों पड़ा, हाँ, क्योंकि जब उनके दो नाम है, एक है विष्णुराज और दूसरा है परीक्षित। विष्णुराज का मतलब है जिनकी रक्षा हमेशा विष्णु या कृष्ण करते हैं, और परीक्षित का मतलब है कि वो बालक जब बाहर आया माँ के गर्भ से तो वो सदा ढूंढने लगा, परीक्षा करने लगा, हाँ, कि ये व्यक्ति ने तो नहीं मुझे बचाया, मुझे जिसने बचाया ये तो व्यक्ति नहीं है, ये तो व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार से वो ढूंढने लगा वो बालक। और आगे चलकर जब युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था जिसमें शिशुपाल का वध किया था, उस समय कृष्ण आए थे द्वारका से और कृष्ण को ऊंचे आसन में बिठाया था, उनकी पूजा आदि हो रही थी, उसी समय ये बालक वहां घूम रहा था परीक्षित, और वो जाते जाते कृष्ण के पास गया और देखने लगा बहुत देर से। व्यास वो बालक ने पहचान लिया कि मुझे बचाने वाले कौन है, यही है। तो व्यासदेव वहां थे, व्यासदेव ने कहा, हे प्रभु, आपने तो अभी द्विभुज रूप धारण किया है और इस बालक ने आपको चतुर्भुज रूप में आपको देखा था माता के गर्भ में जब आपने उनकी रक्षा की थी, तो आप अपना चतुर्भुज रूप एक बार प्रकट करके इसको दिखाइए, निश्चित हो जाएगा कि क्या कि ये आप ही वास्तव में उनके रक्षक हैं। तो भगवान ने राजसूय यज्ञ में कुछ एक क्षण के लिए उस बालक परीक्षित के लिए अपना चतुर्भुज रूप दिखाया था, और फिर ऐसे परीक्षित महाराज बचपन में ही कृष्ण बलराम के विग्रहों की पूजा करते थे, उनकी सेवा करते थे, ऐसी सेवा करते करते बड़े हो गए थे। और जब पांडव इस जगत को छोड़कर हिमालय की ओर चले गए, वैकुंठ जगत में चले गए, तो राजा परीक्षित इस जगत के राजा बने। इरावती से उन्होंने विवाह किया जो उत्तर की पुत्री थी, और उनसे उन्हें जनमेजय नामक पुत्र प्राप्त हुआ। तो ऐसे परीक्षित महाराज जो बहुत बड़े राजा थे और अर्जुन के भांति ही पूरा राज भारत वर्ष को संभालते थे। तो एक दिन परीक्षित महाराज जब दिग्विजय करने के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि एक जो शूद्र है राजा का वेश धारण करके एक गाय और बैल को उनके पांव में मार रहा है। तो ये देखकर राजा परीक्षित को दुख हुआ, उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उन्होंने कहा ये कौन है, तो वो वास्तव में कली था। कौन था? कली। क्योंकि जहां कली होगा वहां अधर्म निश्चित है। तो ऐसे कली ने क्या किया था, जो धर्म है बैल के रूप में था, उनके तीनों पांव तोड़ दिए थे, बैल के रूप में वो धर्म रो रहा था, और पृथ्वी गाय के रूप में थी, उनके भी पादों में प्रहार किया जा रहा था, दोनों भी दुखी थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। धर्म रूपी बैल पृथ्वी से कहता है कि अभी तो कलयुग में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपकी हत्या करके आपको खाने वाले लोग होंगे, सारे गाय का वध करेंगे और उसको भक्षण करेंगे, ये सारे यवन आदि है। और वैसे देखा जाए तो वही हो रहा है, हाँ, कलयुग में आप देखेंगे हर जगह कसाई खाने खोले जा रहे हैं, और जो गाय हमारी माता है जिसका दूध जीवन भर हम पीते हैं उसी को काट के उनका मांस खाया जा रहा है। तो ऐसे परीक्षित महाराज उस कली को डांटते हैं और उनको मारने के लिए तत्पर होते हैं। तो कली कहता है कि मैं आपके यहाँ का प्रजा हूँ, मुझे भी आप स्थान दे दो। तो कली को परीक्षित महाराज 5 स्थान प्रदान करते हैं। एक स्थान कली वहां जहां रहता है, कौन से स्थान में, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मद्यपान होता है, जहां लोग शराब आदि पीते हैं, और जहां व्याभिचार होता है, और जो चौथा स्थान है, चौथा स्थान क्या है, मांसाहार, ऐसे 4 स्थानों में कली को स्थान प्रदान किया, क्योंकि जहां ये 4 पाप कार्य होंगे वहां कली होगा। फिर 5वां स्थान दिया कि जहां बहुत अधिक मात्रा में स्वर्ण है, गोल्ड होगा, क्योंकि वहां अधर्म आदि होगा। इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने उनको स्थान दिया। और फिर क्योंकि परीक्षित महाराज ने कली को मारा नहीं, कली में कृष्ण भक्ति है, तो थोड़ी देर हम चर्चा करते 5 मिनट के लिए कि परीक्षित महाराज फिर एक दिन जब शिकार करने के लिए वनवास में गए, तो वनवास में जब वो गए थे तो वो जंगल में जब वो गए इनको मारने के लिए, पशुओं के वध करने के लिए, तो बहुत धनुष लेकर घूम रहे थे। फिर वो बहुत थक गए और थक कर वो जाते कहाँ, एक श्रमिक ऋषि की कुटिया में जाते हैं जहाँ श्रमिक ऋषि ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। और जब परीक्षित महाराज उनके कुटिया में प्रवेश किए थे, उन्होंने देखा कि अरे मैं राजा हूं, मेरा स्वागत करने के लिए ये उठा नहीं है, ये ध्यान करने का बहाना बना रहा है। तो परीक्षित महाराज गुस्से में आकर, उनको बहुत प्यास और भूख लगे थे, गुस्से में आकर उन्होंने वह मरा हुआ सर्प उठाया अपने धनुष में और उस ऋषि के गले में डाला और निकल गए। और बाद में जब ऋषि के पुत्र को पता चला कि ये जो राजा कोई आया था जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, तो वो जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उसने जिस नदी में स्नान कर रहा था अपने मित्रों के साथ, उसका जल अपने हाथ में लिया और वहां शाप दे दिया कि जिस भी राजा ने या जिस भी व्यक्ति ने घृणित कार्य किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। अब बहुत सारी चीजें बोले कि ये जो शासक है ये कुत्ते के भांति है, जो कुत्ते का स्थान दरवाजे में होता है वो दरवाजा छोड़कर घर में आकर मालिक के साथ एक ही थाली में भोजन करना चाहता है, ऐसी ऐसी चीजें राजा के लिए, शासक के लिए बोल रहे थे वो जो पुत्र है। उन्होंने कहा ऐसे राजा को मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन में तक्षक नामक सांप, जो सांप को पंख है उड़कर जाता है, तक्षक नामक सर्प आकर उसे काट लेगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। ऐसा शाप उन्होंने दिया श्रृंगी ऋषि ने। तो फिर वो गए अपने कुटिया में, देखा कि उनके पिता बैठे हुए हैं और गले में मरा हुआ सांप है। तो इसको देखकर जो श्रृंगी ऋषि जो बालक था वो जोर से चिल्लाने लगा। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर जो श्रमिक ऋषि जग जाते हैं, वो देखते कि अरे मेरे गले में माला तो नहीं है फूलों की, लेकिन क्या है, मरा हुआ सांप है। उसको उठा के फेंकते हैं और कहते कि हे बेटा तुम क्यों रो रहे हो। उस श्रृंगी ऋषि ने कहा कि मैंने एक श्राप दे दिया है उस व्यक्ति को जिसने ये कार्य किया है। और जब उनके पिता ने सुना कि राजा परीक्षित पांडवों का आखिरी वंशज, भारत वर्ष का राजा जो कृष्ण के महान भक्त है, उनको तुमने श्राप दिया, उन्होंने कहा तुमने बहुत बड़ा पापमय कार्य किया है। तुरंत उस पिता ने परीक्षित को मैसेज भेजा। तो परीक्षित महाराज के पास इतनी शक्ति थी कि इस श्राप को परास्त कर सकते थे, वापिस श्राप दे सकते थे उस श्रृंगी ऋषि को। लेकिन उन्होंने सोचा कि ये कृष्ण की मेरे जीवन में योजना है, कृष्ण मेरे जीवन में इस रूप में आना चाहते हैं, अपनी कृपा प्रदान करना चाहते हैं। उसको उन्होंने पॉजिटिवली लिया, कृष्ण की कृपा को स्वीकार किया और उस श्राप को स्वीकार उन्होंने किया। और फिर उन्होंने क्या किया कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं इस भौतिक जगत से विरक्त हो जाऊं, कृष्ण चाहते हैं कि मैं पूर्ण रूपेण उनकी शरणागति को स्वीकार करूं। तो ऐसे राजा परीक्षित ने भगवान की कृपा को देखा। हमारे जीवन में थोड़े कष्ट आते तो हम सबसे पहले किसको गालियां देना शुरू करते हैं, भगवान को। वास्तव में हमारे दुष्कर्म इतने हैं, भगवान तो हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं, हमें प्रकाश दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। वैसे देखा जाए हम तो हर समय बहुत, हमें कष्ट प्राप्त होने चाहिए, इतने पाप कर्म निंदनीय कर्म हमने अपने जीवन में किए हैं। लेकिन परीक्षित महाराज कहते कि ये कृष्ण की कृपा है। ये देखकर परीक्षित महाराज ने 7 दिन उनके पास बचे थे मरने के लिए, और हमारे पास 7 मिनट भी नहीं बचे। प्रभुपाद कहा करते थे, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, कि कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे, प्रभुपाद लिखते हैं कि भागवतम में कि परीक्षित महाराज के पास भागवत सुनने के लिए 7 दिन थे। यदि हम सोचे कि मेरे पास बहुत समय है, तो लेकिन नहीं, हमारे पास 7 मिनट भी नहीं है। हमें यह भी पता नहीं कि कल की सुबह में घर जाकर देखूं या नहीं देखूं। जैसे लंदन में रानी विक्टोरिया थी, वो जब रात्रि के समय में सोई तो सुबह के समय उसकी सेविका जब गई उसको उठाने, ब्रिटेन की जो रानी, तो सभी वो मरी हुई उनको मिली। तो मतलब क्या भरोसा है हमारे जीवन का। लेकिन हम इतना अधिक ये सोच रहे हैं कि मेरे पास लंबी आयु है। यही तो ये जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है। जब पांडव वनवास में थे तो युधिष्ठिर महाराज आदि ये सब भ्रमण कर रहे थे तो द्रौपदी को प्यास लगी। द्रौपदी ने कहा मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे अभी पानी चाहिए। तभी पत्नी ने बोला है तो पति को भागना पड़ेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम चले जाओ। अर्जुन गए जलाशय के किनारे, पानी भरने ही वाले थे तो जलाशय के किनारे जो वृक्ष था उस पर एक यक्ष था, हाँ, जो कुबेर का अनुचर या अनुयायी था। तो उस यक्ष ने पूछा हे अर्जुन पानी मत भरो, पानी पियोगे तो मूर्छित हो जाओगे, मरोगे, सबसे पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा प्रश्न का उत्तर। तो फिर उन्होंने फाइनली पिया पानी तो वहां ही वो लेट गए, मूर्छित हो गए। तो फिर तुरंत ही नकुल सहदेव आदि जाते हैं और उनको वो सारी चीजें, उनके साथ भी सेम घटना घटित होती है। लेकिन फाइनली हाँ युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और यक्ष कहता है युधिष्ठिर देखो तुम मेरी बात सुनो, पानी पीने से पहले मेरे प्रश्न के उत्तर दो, नहीं तो तुम भी मरोगे या तुम भी मूर्छित हो जाओगे। तो उन्होंने 100 प्रश्न पूछे महाभारत में। पहला एक प्रश्न था किम आश्चर्य, किम धर्म, धर्म क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो ये जब पूछा कि जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, वो जानते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। कि रोज व्यक्ति अपने आंखों के सामने देख रहा है कि कोई मरा हुआ है, रोज न्यूज में देख रहा है कि हजारों लोग मर गए, अभी एक फ्लाइट 10 दिन से गुम हो गई है 280 लोगों के साथ, अभी कहां चले गए किसी को पता नहीं है। हाँ सारा जगत उनको ढूंढ रहा है करोड़ों रुपए खर्च करके। मतलब मृत्यु हर समय हम अपने आंखों से देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, टेलीविजन में देख रहे हैं, दूसरों से सुन रहे हैं, पड़ोसियों के माता पिता सब हमारे मर रहे हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मेरे साथ नहीं होने वाला, मैं नहीं मरने वाला, मैं मरने के लिए बना ही नहीं हूं, ऐसा लगता है कि नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज के यही तो मूर्खता है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। जैसे कसाई खाने में मैं अभी कहां गया था, ओडिशा गया था, तो वहां एक दुकान के सामने से जा रहा था मार्केट में, तो वहां एक बकरी काट के लटकी हुई थी और वह दूसरी बकरी बंधी हुई थी और बहुत सारा ब्लड जो रक्त है वह गिरा हुआ था। तो जो व्यक्ति वह दुकान का वो उसको धो के बाहर, बहुत सारा ब्लड बाहर आ रहा था, तो हम जाते जाते देखा मैंने तो जो वह बकरी थी वो आंखें दूसरी बकरी जो अभी वो काटने के लिए वो उसका नंबर है, आगे उसका नंबर आने वाला है 10 मिनट के बाद, वो देख रही है और मजे से क्या कर रही है, घास खा रही है। अभी उसको मूर्ख बकरी को नहीं पता कि अभी 10 मिनट जाने दो, ये जो मेरी सहेली लटकी हुई है ना आगे 10 मिनट के बाद मुझे भी क्या है लटकना पड़ेगा। तो वही स्थिति हमारे जीवन की है। हमारे जो साथी संबंधी सगे माता पिता आदि सब इस जगत से चले गए हैं लेकिन हमारे पास इतना भ्रम है कि हम सोच रहे कि अभी मैं मरने वाला नहीं हूं। तो हम सोचते कि परीक्षित महाराज मरने वाले 7 दिन में, मुझे नहीं मरना है, हमें 7 दिन का 7 मिनट का भरोसा नहीं है, हमारा आगे आने वाले 7 घंटे का भरोसा नहीं है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को जब शाप मिला तो परीक्षित महाराज ने भगवान की कृपा को अपने जीवन में देखा और उसको स्वीकार किया और तुरंत ही अपने राजपाट को त्याग दिया, इतना विरक्त। क्योंकि हमें पता है कि ये जगत की चीजें मुझे समाधान नहीं दे सकती, मेरे साथ एक सुई भी और धागा भी लेके नहीं जा सकता मैं। कोई माता कह रही होगी कि सुई धागा में हमेशा, गांव में कुछ स्त्रियां होती है ना सुई धागा हमेशा पास रखती है, कुछ टूट फूट जाए या कट जाए तुरंत सिलाती है। तो कोई कहेगी सोचेगी कि मैं मरते मरते क्या ले जाऊंगी साथ, सुई और धागा, नहीं, आप एक छोटी सी सुई भी ले नहीं जा सकते, तो इतनी बड़ी वस्तु क्या ले जा सकते हो, घर का फर्नीचर और बड़े बड़े महल जो हम बना रहे हैं। तो ऐसे परीक्षित महाराज ने क्या किया, बिना किसी आसक्ति के सारी चीजों को त्यागा और तुरंत महल से बाहर पड़े। हमें मृत्यु आ जाए कि पता चले कि 2 दिन के बाद मरने वाले हैं तो 2 दिन हमारे कैसे गुजरेंगे, सोचते रहेंगे कहां कहां मैंने पैसा रखा हुआ है, कहां किसको इस बेटे के नाम में उतना करना है, उस बेटे के नाम में ये करना है, वहां से वो लेन देन, सारी चीजें हम खत्म करना चाहते हैं। इसी झमेले पे पड़े रहेंगे, मृत्यु आएगा और हमारा गला दबाएगा, तब हम कृष्ण कृष्ण नहीं करेंगे, हाँ काव काव करेंगे। जैसे एक तोता होता है ना, तोते को कई लोग घर में ना नाम उच्चारण सिखाते हैं, हाँ तोता कृष्ण कृष्ण कहते रहता है, लेकिन जब उसकी गर्दन पकड़ो तो नहीं, काव काव कहेगा। तो ऐसा भगवत भक्ति का अभ्यास करना है कि मृत्यु के समय में हमारे मुख से क्या निकलना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे परीक्षित महाराज को शाप मिला, तो परीक्षित महाराज सारी चीजों को त्याग कर गंगा नदी या यमुना नदी के किनारे गए, गंगा नदी के किनारे गए, और उन्होंने वहां फिर सारे ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। ये न्यूज फैली कि भारत वर्ष के जो राजा है वो मरने वाले हैं, उनको शाप मिला है, तो पूरे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि बहुत सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। और परीक्षित महाराज ने वहां जाकर हाँ उन सबसे निवेदन किया, गायतः विष्णु गाथा, हे साधुगणो, हे वैष्णव, हे भगवान के प्रिय भक्तों, मुझे मृत्यु का भय नहीं है, और ये तो तक्षक जो उड़ने वाला सांप आकर मुझे काटेगा उसका भी मुझे भय नहीं है। मैं तो एक ही चीज अपने जीवन में चाहता हूं कि आप जैसे भगवान के महान भक्त सदैव कृष्ण कथा का वर्णन करते रहो, ऐसी कृष्ण कथा को श्रवण करते करते ये जो देह है एक ना एक दिन छूटने वाला है, लेकिन कैसे छोड़ना चाहता हूं मैं, भक्तों के संग में कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए भगवान नाम का उच्चारण करते हुए इस शरीर को त्यागना चाहता हूं। तो इस प्रकार का निवेदन उन्होंने किया। तो फिर जब वो वहां बैठे थे तो अलग अलग ऋषि मुनि अलग अलग चीजें बोल रहे थे कि मृत्यु आ रही ना, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि उस कैलिबर का कोई नहीं था, उस योग्यता का कोई नहीं था। उसी समय शुकदेव गोस्वामी महामुनि का आगमन होता है, जिन्होंने कोई वस्त्र धारण नहीं किए थे, पूरे विश्व में ऐसा विचरण कर रहे थे एक पागल व्यक्ति के भांति, हाँ जिनको बच्चे उनके ऊपर पत्थर मार रहे थे, हाँ वो बिल्कुल इस जगत से परे थे। जो महान भक्त है उनको भौतिक मान सम्मान आदि की कोई चिंता नहीं है, वो सदैव अपने मन को कृष्ण में रममान रखते हैं, कि उनको पता है इस जगत की चाहे अच्छी चीजें हो बुरी चीजें हो दोनों ही दुख देने वाली हैं। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है, भगवत भक्ति। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी का आगमन वहां हुआ तो परीक्षित महाराज और सारे लोग खड़े हो गए, इवन वह नारद थे, व्यासदेव आदि सब थे। शुकदेव गोस्वामी 16 साल के बालक थे, वो आकर बैठ गए, उनको आसन दिया और उनके चरणों में प्रणाम किया परीक्षित महाराज ने, और कहा, उन्होंने पूछा, परीक्षित महाराज पूछते हैं कि आप जैसे जो महामुनि हैं, आप जैसे वैष्णव हैं, वो अपने लिए जगत में विचरण नहीं करते, वो सदैव दूसरों के हित के लिए इस जगत में विचरण करते हैं, और हे शुकदेव गोस्वामी, आप किसी के घर में जाते हो तो कोई आकांक्षा लेकर नहीं जाते कि इस व्यक्ति के घर में जाऊंगा तो उससे मुझे इतनी दक्षिणा मिलेगी, इस भावना से नहीं। शुकदेव गोस्वामी जाते हैं किसी व्यक्ति के घर में, उतना समय रुकते हैं जितना समय गाय का दूध निकालने में लगता है, और उतने समय में उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति का संदेश देते हैं, उतने समय में उसको जगाते हैं कि आपका जीवन अंधकार में है, उठो और भगवत भक्ति में लगो, भगवत सेवा में लगो। तो ऐसे परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से कहते हैं, अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्यः यत्कार्यं म्रियमानस्य सर्वथा यश्रोतव्यम् अथो जप्यम् यत्कर्तव्यम् नुभि प्रभो स्मर्तव्य भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययः। कि आप सारे जगत के गुरु हो, आप बताओ कि जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है उस व्यक्ति को किसके बारे में सुनना चाहिए। ऐसे कई सारे प्रश्न पूछे, लेकिन ये प्रश्न हम सबके लिए है कि जो मृत्यु के नजदीक है उसके लिए किसके बारे में सुनना चाहिए, किसके बारे में कीर्तन करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो शुकदेव गोस्वामी ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य च देह पूज्य च नित्यदा। जो भी व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, भगवान हरि के बारे में श्रवण करना चाहिए, भागवत का कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए और उनका गुणगान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम यहाँ विराम देते हैं शुकदेव गोस्वामी की ये जो महिमा है जिन्होंने स्थापित किया कि भगवान कथा को सुनना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, वृंदावन धाम की, नित्याय गौर प्रेमानंदे।